वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। बाबा का कौन सा वृक्ष है? चंदन का। क्यों? बरगद खुशबू देता है, महक होती है उसमें, और रूहानी खुशबू, और चंदन शीतलता, शीतलता का प्रतीक है ना चंदन, शांति, कई उपयोग है चंदन के, तो औषधि भी बनती है। तो पहली कमाल की विदेशियों ने सबसे बाप को पहचान लिया, दूसरा वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गई। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई, देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। देश भिन्न भिन्न, धर्म भिन्न भिन्न थे, भाषा भिन्न भिन्न, कल्चर भिन्न भिन्न, उनकी संस्कृति अलग अलग। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण कल्चर। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है ना। और कमाल क्या की है? और भी कुछ कमाल की है? बाप का बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलकर एक कर दी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहां भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है, संस्कृति एक, दिनचर्या एक। यह अलग है, विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक। सबको अमृत वेला, सबको मुरली, सबको ट्रैफिक कंट्रोल, सबको नुमा शाम का योग, सबको बाप का परिचय देना, सेवा, ज्ञान, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई एक ही है, यूनिवर्सल स्टडी है, एक ही पढ़ाई सबको पढ़ाई जाती है, अलग अलग भाषाओं में भी पढ़ते हैं। तो यह भिन्नता का त्याग, यही कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? हमने जो कमाल की है वो बाबा हमको समझा रहे हैं कि तुमने ये कमाल की है। हमारी कमाल का बाबा हमको ज्ञान करा रहे हैं कि तुमने ये कमाल की है। जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना, क्या गाते हैं बाप के लिए? बाबा ने कमाल कर दी। तो हम बाबा के लिए गाते हैं, बाबा आपने कमाल कर दी, और बाबा फिर क्या गाते हैं? कमाल मैंने नहीं, तुमने की है। फिर बाप फिर गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दी। तो बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, देख देख हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। तो बाबा विदेशियों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी विदेशी बच्चों ने एक कमाल कर दी, सबसे बड़ी कमाल कर दी, कौन सी? बाबा को पहचाना। वहां किस घर में जन्म लिया, किस कल्चर में, किस धर्म में, कहीं दूर सुदूर प्रांत में जन्म लिया, पर भारत में आए हुए भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, अपना बना लिया, सर्व संबंध उससे जोड़ लिए, इतने बड़े कार्य कर लिए। कभी सोचा भी नहीं था किसी ने ऐसा हो सकता है उसके जीवन में, हो गया। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालिया, वैरायटी वृक्ष की डालिया होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालिया बन गई। वैरायटी वृक्ष धर्म, मठ, पंथ, कल्प वृक्ष जो है उसमें वैरायटी वृक्ष की डालिया, अलग अलग डालिया, अलग अलग पत्ते, एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालिया बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालिया हो, एक पिता की हम संतान, भिन्नता में एकता ला ली, तो भिन्नता समाप्त की और एकता लाई, बड़ा काम है ये। क्या क्या भिन्न था, उनका देश अलग था, भाषाएं अलग थी, कल्चर भिन्न था, कुल अलग, धर्म अलग, परिवार अलग, तो वो सबको छोड़कर भिन्नता में एकता लाई। अब कल्चर है ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मणों की संस्कृति। यह कभी नहीं कहना कि हमारे देश का कल्चर है, ऐसा भी नहीं कहना। भारतवासी ये भी नहीं कहे कि भारत का कल्चर है, ये ना भारत का है ना विदेश का है, ये नया कल्चर है एकदम, ये ब्राह्मण कल्चर है, परमात्मा कल्चर है। भारत कहना फिर भी वो भी एक देहभानी है, हम भारत के हैं, ये विदेश के हैं। तो भिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, यही कमाल है ना। और कमाल क्या है कि बाप के तो बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या आदि सब मिलकर एक कर दी, फिर दिनचर्या भी एक सबकी, सारे विश्व भर में, अमेरिका लंदन कहां पर भी हो, एक ही दिनचर्या। ये अलग है, विदेश की अलग, भारत की अलग नहीं, सबकी एक। तो भिन्नता का त्याग, यह है तीसरी कमाल। समझा क्या का कमाल की? तो बाप गीत गाते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, बाबा ने कमाल कर दिया, और बाप गीत गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दी। तो बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। आगे सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की सुनते रहते हैं, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफर करते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा, कैसे होगा। ये प्रश्न जो है इसमें जटिलता है बहुत सारा, संशय का स्पर्श है, इस कैसे मुश्किल है, के बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है, कौन सा, सफलता का वरदान, और कैसे को ऐसे करने का वरदान, और असंभव को संभव करना। क्या वरदान है संगम युग को, ये युग ही है असंभव को संभव करने का युग, ये मौसम है विजय का। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं, नहीं यह होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये सब अवचेतन मन की ट्रेनिंग है, सबकॉन्शियस माइंड की, कि जिसमें इस तरह के संकल्प दिए जाते हैं, ये कैसे होगा नहीं, ये हुआ पड़ा है, ये तो होगा ही, मैं इसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव है, ये सब सजेशन से, ऑटो सजेशन जिसको कहते हैं, आत्म सुझाव, यह रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना है, ज्यादा काम नहीं है। सहज सफलता का आधार है दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, और सहज होगा, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सुझाव है, सकारात्मक सोच है। संकल्प की हलचल है तो, अगर संकल्प में हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी, अगर संकल्प में हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। तो संकल्प कैसे हो, दृढ़ शक्तिशाली, बिना कोई संशय के, शुद्ध श्रेष्ठ महान पॉजिटिव, कोई व्यर्थ नहीं उसमें। अच्छा तो क्या सुना यहाँ पर, बाबा कह रहे हैं कि जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतना सहज सफलता अनुभव करेंगे, और ये नहीं सोचो कैसे, उसके बजाय ये सोचो ऐसे, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, फिर प्रैक्टिकल में लाना है, और होगा और सहज होगा। तो जो भी हम संकल्प करें ये बात को लाओ कि ये होगा और सहज होगा, होगा और सहज होगा। चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले। ये मुरली किस पर थी? उमंग उत्साह, उत्सव पर, सदा उत्सव मनाने वाले। हर घड़ी उत्सव है शिवरात्रि पर, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी। आत्मा क्या कहा था? संपूर्ण प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, फाइल को ऐड नहीं करो, प्रतिज्ञा को फाइनल करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मन से प्रतिज्ञा करो।
लेकिन क्या प्रतिज्ञा करो ये नहीं बताया।
प्रतिज्ञा तो कितनी सही है, बताया ना प्रतिज्ञा भी, संपूर्ण पवित्रता, क्रोध, क्रोध का अंश भी नहीं, व्रत, प्रतिज्ञा, वचन, वचन अर्थात वचन, प्रतिज्ञा है तो बाबा ने बोल दिया है।
ये व्रत बोला, ये मैंने बोला, प्रतिज्ञा नहीं बोला।
सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, अपने मन को आदेश दो कि ये काम मेरे लिए संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो वो जैसा आदेश दोगे मन को वो स्वीकार करेगा, अंतर मन उसे स्वीकार कर लेगा। एक बार अंतर मन उसे स्वीकार कर ले तो सब सहज हो जाएगा, खाली वो उतनी गहराई से उसको स्वीकार कराना है। स्वीकार भर कराने की देरी है, एक बार स्वीकार हो गया अंदर सबकॉन्शियस में कि वो अपना सारा ज्ञान लगा देगा उसको साकार करने में, वो इस कायनात की जितनी शक्तियां वो सारी शक्तियां लगा देगा उसको साकार करने में। केवल हमको उसको स्वीकार कराना है, और स्वीकार कराने का समय है अमृत वेला, और दूसरा समय रात को सोते समय। अमृत वेला से भी रात का जो समय है वो और अधिक शक्तिशाली समय है। सबसे बेस्ट टाइम जो है योग करने का वो कौन सा है? सबसे बेस्ट टाइम जिसमें सीधा, एक तो अमृत वेला तो है ही, सीधा संकल्प अंदर चला जाता है अंतर मन में सोते समय। जब हम खटिया पर लेटे हैं तब, वो उसके पहले का समय नहीं, योग किया या मुरली पढ़ी या चर्चा की वो नहीं, या मोबाइल में कुछ देखा किया या मेल में कुछ किया वो नहीं, जब खटिया पे लेट गए हैं तब वो टाइम है योग को शुरुआत करने का। योग को करते 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 सो जाना है। तो जो चेतन मन, अवचेतन मन और बीच में जो एक बैरियर है प्री कॉन्शियस जिसको कहते हैं, ये चेतन मन के संकल्प को पहुंचने नहीं देता है उधर। ये बैरियर जब हल्का होता है वो होता है सुबह और रात में। तो ये जब हल्का होता है, एक संकल्प को लेके उस संकल्प का चिंतन करते 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 सो जाना, वो संकल्प नींद में मिक्स हो जाए, वो संकल्प घुल जाए नींद में, तो वो समझ लेना अंदर चला गया, अंतर मन में जैसा समा गया। हमारी कोई कमजोरी अगर छूट नहीं रही है, हमारी कोई आदत अगर छूट नहीं रही है, किसी संस्कार से मुक्ति जाना चाहते हो या कोई संस्कार धारण करना हम चाहते हैं, जैसे एक संस्कार है हम धारण करना चाहते हैं मधुरता, सो रहे हैं सब कुछ हो गया अभी लेटे हुए हैं, उस समय संकल्प करो कि मैं मधुर आत्मा हूं, मधुरता का गुण मुझ में समा रहा है, मधुरता का गुण मुझ में है ही, और मधुरता का चिंतन करते 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 सो गए, तो वो मधुरता और वो संकल्प और नींद वो उसमें घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, और वो सीधा अंदर घुस जाएगा, गहराई में कहीं चला जाएगा, एकदम अंदर तहखाने में, स्टोर हाउस में, अंदर सबकॉन्शियस के अंदर। बस वो अंदर घुसाने की बात है, बस वो अंदर घुस गया तो काम हो गया, इतना समझ लेना। वो सारा क्या, सारी रात वो अपने आप चलते रहेगा। फिर हम चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, क्योंकि ये जो समय है रात का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ ही वो सबकॉन्शियस सक्रिय हो जाता है जबकि कॉन्शियस शांत होता है। हमारा सारा योग भी किस लिए है? हम जिसमें चेतन मन को शांत कर रहे हैं, चेतन मन अर्थात बाह्य मन, बाह्य मन जागृत मन, कॉन्शियस माइंड या तार्किक मन है, वो तर्क वितर्क करता है, वो कुछ भी उसको बताओ तो वो हाँ ना करता है। पर जो अंतर मन है उसको तर्क वितर्क की भाषा समझ में नहीं आती है, उसको जो भी दे दो वो स्वीकार कर लेगा, उसको पॉजिटिव निगेटिव समझ में नहीं आता है, वो जो भी दे दो स्वीकार कर लेगा, वो बहस नहीं करता है कभी, वो कभी विरोध नहीं करता है, वो सदा सक्रिय है, और उसमें असीमित शक्तियां है, अकल्पनीय शक्तियां है, अद्वितीय शक्तियां है, अविश्वसनीय शक्तियां, बड़ा ही भोला है वो, इतना भोला है, वो भूमि है, एक जमीन है, जो बीज उसमें डाल दो उसमें बीज डालो, मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ, बस आज्ञाकारी है वो, गुलाम है, उसमें बीज डालो मैं मूर्ख हूँ तो साकार कर देगा और आपको मूर्ख बना ही देगा एक दिन। उसमें बीज डाल दो मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, इस संसार में सबसे अधिक बुद्धि मेरे पास है, उसमें बुद्धि डाल दो, ये बीज डाल दो तो हो जाएगा। आप अगर ये बीज डालो कि मुझे मुरली तो बिल्कुल याद नहीं रहती है, मेरी स्मरण शक्ति तो अभी बुढ़ापा आ गया ना इसके लिए बहुत कम होती जा रही है, तो वो बिल्कुल काम करेगा, पूरी शक्तियां लगा देगा इस संसार की, इस सृष्टि की, और आपका जो संकल्प आपने डाला उसमें से बीज निकलेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो बीज उसमें डालोगे, जो आप कहते रहोगे, ये बीज डालना अर्थात बार बार दोहराना, दूसरों को भी बताना कि मेरा ऐसा है, मुझे नहीं याद रहता है, बार बार कह रहा, मतलब आप डाल रहे हो, सजेशन दे रहे हो उसको, बार बार दे के वो बीज डाल रहे हो, बीज कौन सा डालना है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मेरी स्मरण शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है, हर दिन मुझे सब कुछ ज्यादा से ज्यादा याद रखता है। इसी तरह खुशी, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, ये जो बाबा कहते हैं ना सम्मान देते हैं, वो सब क्या है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। जो संकल्प हम डाल रहे हैं, खाली वो संकल्प अंदर तक पहुंचता ही नहीं है, हम खाली योग में कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक किक मार के दूर फेंक देता है, कहीं वो पहुंचता ही नहीं अंदर, इतनी जोर से किक मारता है कि हम खुश होते हैं कि हमने योग तो कर लिया पर पहुंचा कहां, परिस्थिति आने के बाद अशांत हो गए। खुशी का संकल्प सुबह लिया था, दिन भर में खुशी गायब हो गई। सुबह संकल्प लिया मैं अचल अड़ोल आत्मा हूँ, अभी ये अचल अड़ोल आत्मा, ये संकल्प खाली चेतन मन के तल पर ही घूम रहा है, वो अंदर गया ही नहीं है, बस यही किया और परिस्थिति आई उखाड़ के फेंक दिया आपका उस संकल्प। उसी तरह काम वासना, काम वासना अंदर छिपी हुई है सबकॉन्शियस में, ऊपर से सामान ले रहे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, लिया थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया, सुबह शाम हो गया, वो अंदर गया ही नहीं है, वो वही बैठी है और वो निकलेगा बाहर, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, मैपन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, जो जिससे हमको मुक्त होना है संकल्प को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और संकल्प को तभी पहुंचेगा जब कॉन्शियस माइंड, बाह्य मन शांत होगा, वो जितना शांत वो संकल्प उतना अंदर जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इसको शांत करना, सेकंड स्टेप इज जो संकल्प लिया वो पॉजिटिव संकल्प हो और उसको दोहराते रहना है, और तीसरा टाइम कौन सा है, किस टाइम में कर रहे हो, एक तो अमृत वेला उठते ही, पर अमृत वेला उठते ही सबको चिंता रहती है फटाफट योग में जाए और हमारा योग वो जो बना के रखा है हमने अपने मन में एक योजना, पूर्व नियोजित योजना, और जिसके आधार से सालों से चलते आ रहे हैं एक योग का जो पैटर्न, उसको पूरा करना है, तब तक संतुष्टता नहीं होती है, तो ये जो सबकॉन्शियस का थोड़ा रह जाता है बाजू में। तो बेस्ट टाइम जो है वो है रात का, जब योग नहीं, उसके पहले का योग नहीं, पढ़ना नहीं, मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कब, जब लेटे हुए है और बत्ती बंद हो गई है, उस समय यहां पे फिर चालू करो योग। और एक दूसरी चीज, अंतर मन जो है उसको तर्क समझ में नहीं आता है, विरोध समझ में नहीं आता है, उसको मजाक भी समझ में नहीं आती है, आप मजाक मजाक में दूसरों को कहते रहो कि मेरा तो ऐसा ही है, वो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो मजाक को भी स्वीकार कर लेता है, जो भी आप कहो उसको वैसा ही स्वीकार कर लेता है। जैसे विदेश की वो कहानी है ना, एक पिता था, उसको अपने बेटी की शादी करानी थी, बेटी की, मैं तो अपनी बेटी के लिए अपना हाथ भी दे सकता हूँ, ऐसे ही मजाक में कहते था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मिल में काम कर रहा था, उसका हाथ ही कट गया, और जब घर आए तो पता चला कि उसकी बेटी की शादी मैंने फिक्स हो गई जहां करनी थी। तो अवचेतन मन की शक्ति ऐसी है कि जो भी उसको कहोगे, मजाक में भी कहोगे, उसको मजाक समझ में नहीं आता है, वो उसको भी सत्य ही मान लेता है, उसके पास वो भोला है, बहुत गुलाम है, जो भी उसको दोगे वो स्वीकार करता है, तो उसको मजाक समझ में नहीं आता है। और दूसरा जो एक और एक इम्पोर्टेंट चीज है, भावनाएं, वो भावनाओं के तल पर काम करता है, उसमें तर्क उसको समझ में नहीं आता है, उसको विजुअलाइजेशन काम करता है, वहां पर भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, ये चाहिए उसको, क्रिएटिव है वो, रचनात्मक है, विधायक है, रचना करता है वो। तो उसको, हमको अगर किसी से छूटना है, किसी को काम विकार से छूटना है, सारा दिन भर पवित्रता के बारे में पढ़ते रहे, काम विकार के विरोध में पढ़ते रहे, उसको गालियां देते रहे, ऐसा होता है उससे, ये होता है, नर्क का द्वार आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु वो है ही बना हुआ, उसको वहीं पर जाकर खत्म करना पड़ेगा, इस लेवल पर नहीं होगा, वो तर्क से नहीं जाएगा, उसको आपको एक विजुअलाइज करना पड़ेगा, एक इमेज देनी पड़ेगी कि मैं ये हूं, संपूर्ण फरिश्ता हूं, उस फरिश्ते को देखना पड़ेगा कि ये फरिश्ता मैं हूं और इसमें संपूर्ण काम से ये मुक्त है, संपूर्ण पवित्रता है, क्योंकि अंतर मन को इमेजेस की भाषा समझ में आती है, इमेज समझ में आता है उसको, विजुअलाइजेशन समझ में आता है। एक है विजुअलाइज करना, देखना और फिर उसको स्वीकार करना कि ये मैं हूं, तो उसको समझ में आएगा। तो ये सारे कार्य है, चेतन और अवचेतन, चेतन बाह्य मन, अंतर मन, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, पुरुष मन, स्त्री मन भी कहते हैं इसको, पैसिव एक्टिव, कल्पनावादी, एक है कल्पनावादी, एक है सिद्धांतवादी, तार्किक अतार्किक, ये भी अलग अलग नाम है उसके, ये तर्क वितर्क करता है, ये तर्क नहीं करता है। चेतन मन जो है, जैसे कि वो कप्तान है, जहाज का जो कप्तान है वो जो भी आदेश देगा का कैबिन में बैठे वाले सब मानेंगे, वो देखेगा कि इधर जाओ तो उधर जाएंगे, चाहे चट्टान हो फिर भी वहीं जाएंगे वो, और चट्टान से टकरा कर दुर्घटना होगी क्योंकि आदेश ही वैसा दिया था। तो आप जो अपने मन को बार बार बात करते रहते हो, जो संकल्प आते रहते हैं, उन संकल्पों में पॉजिटिविटी हो, स्वयं के प्रति हीन भावना है कि मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता, ये जो बाबा कह रहे हैं ना, कैसे नहीं ऐसे, कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संशय है इन विचारों में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से उसको स्वीकार करता है। पर आप कहो कि नहीं, ये तो बहुत सहज है, ये सफलता तो हुई पड़ी है, मैंने तो बहुत बार किया है, एकदम सहज है मेरे लिए, सफलता का वरदान मेरे पास है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इस स्टेटमेंट को भी, ये जैसे कुछ कुछ वाक्य, जैसे आज के मुरली में वाक्य है, दिव्य बुद्धि की जो खुराक है वो है मनन शक्ति। अब ये जो वाक्य, इसको देखना है, कैसे देखना है इसे, जैसे आकाश में लिखा हुआ है ये वाक्य, कैसे लिखा है, आग से लिखा हुआ है, दिव्य बुद्धि की खुराक है डैश मनन, आग से लिखते हुए देखना है, इतना स्पष्ट वो दिखे हमको कि वो हमारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर ले। चेतन मन तर्क वितर्क करता है, आज याद रखेगा कल भूल जाएगा, पर हमने जब इमेज बना के रख दी है तो तुरंत याद है। अगर हमको कोई पूछे आपका नाम क्या है, हम बता देंगे। अच्छा घर कहाँ है, वो घर का एड्रेस भी याद है, भले हम रिवाइज थोड़ी करते हैं अपने लौकिक घर का एड्रेस का, फिर भी याद रहता है। शरीर का नाम याद रहता है, कैसे, आधी रात को भी कोई पूछ के उठाए तो ये बता देते, आधी रात को कोई पूछे कि आज की मुरली का वरदान बोलो तो वो तो देखना पड़ेगा ये बहुत भारी काम है। पर नाम क्यों, क्योंकि नाम अंदर चला गया है, अंतर मन ने स्वीकार कर रखा है उसे, ज्ञान को अंतर मन ने ऐसी कीक मारता है कि वो कहां से कहां चला जाता है वो स्वीकार नहीं करता है। हम खाली अपने आप को इस तरह से बताते हैं कि हम इस समान में हैं, पर ये जो समान है, एक समान लेना, फिर उसको पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, फिर और एक बार पढ़ना, फिर एकांत में जाकर उसी एक समान में रहना, तो ये भी योग में ये सारे काम करने, और सबसे ज्यादा काम करना है रात को सोते समय, वो ही सबसे बेस्ट टाइम है हमारा योग जो चालू होता है ना, जब खटिया पे लेटे, वो टाइम है योग की शुरुआत की, तब अपने आप को कमेंट्री देनी है, तब विजुअलाइज करना है, तब सोचना है। तो मनन शक्ति, यहाँ पे मनन शक्ति का भी रोल है, जो आज बोला ना बाबा ने, सात बातें कहा, सात बातों का मनन करो मंजू बहन कौन कौन सी, मनन शक्ति अर्थात बाबा ने कहा टाइटल्स, सबसे पहले टाइटल्स खुश स्मृति मिलाओ, मनन शक्ति अर्थात जो भी टाइटल्स समान तुमको मिले उसको स्मृति मिलाओ, एक दूसरा जो जो गुण है उनको स्मृति मिलाओ। अभी स्मृति में लाना मतलब अंतर मन को स्वीकार कराना, अभी एक टाइटल ले लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसको अंतर मन में स्वीकार कराना है कि मैं वास्तव में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, कल की मुरली में था ना, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो गले का हार है, वो है, उसका स्वभाव ही, उससे बाहर जाना अर्थात अशांत होना, वो वहां रहना अर्थात शांत रहना, हम ढूंढ रहे हैं उसको, ये संकल्प ही गलत है कि ढूंढना है, ढूंढना नहीं है, वो ही शांत है, उसको बाहर जाना अर्थात उससे दूर जाना। तो खुशी की पॉइंट्स नहीं, सबसे पहले टाइटल्स को स्मृति में लाओ, दूसरा गुणों को स्मृति में लाओ, खुशी की पॉइंट्स को स्मृति में लाओ। अभी खुशी की पॉइंट को स्मृति में लाने के लिए पहले हमारे पास रहना चाहिए वो पॉइंट, ये हमने कहीं पढ़ी है और उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करके उसे अपना बनाना है, केवल किसी का लेक्चर सुन लिया वो फिर भी उनका ही चिंतन है, हमें अपना चिंतन खुद बनाना है, खुद अपने निष्कर्ष को। तीसरा, खुशी की पॉइंट स्मृति में लाओ। चौथा, रूहानी नशे की पॉइंट स्मृति में लाओ। नशे वाली कुछ कुछ पॉइंट्स होती है मुरलियों में, पावरफुल पॉइंट्स होती है, जिसमें इतना नशा होता है कि वो हमने अगर जो सबसे पहली बार जब सुनी थी ज्ञान में आने के बाद, तो पता नहीं कितने दिनों तक नशे में थे। वो पॉइंट याद करो, वो कौन सी थी? हाँ, तो ये था चौथा। फिर उसके बाद है रचना, बाप रचता जो है उसका परिचय, रचता के परिचय की पॉइंट को स्मृति में लाओ। अब रचता का परिचय अर्थात हमको ये पॉइंट जब तभी याद रहती है जब हम कोर्स कराते हैं, बाकी ये पॉइंट हम याद नहीं रखते। कोर्स कराते समय जब वो तीसरा चैप्टर आता है, बाप का परिचय, ज्योतिबिंदु है, ऐसा है, गुणों का सागर, वो समझा देते हैं और हो गया काम खत्म। तो ये स्मृति में लाना, रचता का परिचय स्मृति में लाना, बिना किसी को बताने, बताना नहीं है किसी को, खुद के लिए। किसके लिए? मनन शक्ति के लिए। जैसे परमात्मा क्या है, कौन है, उसके क्या, कौन सी शर्त है, क्या वो क्या कहते हैं उसको, कसौटी है कि जिसमें वो बैठता है, सर्वशक्तिवान है, सर्वमान्य है, जो क्लासेस में होता है ना 7 डे शिविर में, वो क्या क्या है, वो सारी पॉइंट स्मृति में लाना। फिर है रचना के विस्तार की पॉइंट स्मृति में लाओ। रचना का कैसा विस्तार है? अभी इसमें सब आत्माओं की पॉइंट आ जाती है, ये सब आत्माएं, सबका अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी तकदीर है, अपनी अपनी बीमारी है, अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना योग है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी कमियां है, अपनी अपनी कमजोरी है, अपनी अपनी विशेषताएं है, अपना अपना भाग्य है, अपना अपना प्रारब्ध है। तो ये सारी पॉइंट्स आ जाती है रचना के विस्तार की। पत्तों को जानना ये भी जरूरी है। और सातवीं पॉइंट बाबा ने कहा, प्राप्तियां और अनुभूतियां की पॉइंट स्मृति में लाओ। तो ये जो साधन है, ये बहुत बड़ा साधन तुमको मिला हुआ है मनन का। फिर तो आगे तो एक लाइन बाबा ने ये भी कहती, जो चाहे उस पर मनन कर सकते हो, जो पसंद ही है उस पसंद पर मनन करो। मनन करते करते ही सहज मगन अवस्था को प्राप्त करोगे। ये मगन अवस्था जो है ना, ये आत्माभिमानी अवस्था है। मगन अवस्था ही देह से न्यारी अवस्था है। केवल हम योग में बैठे हुए हैं और वहां केवल 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, या कोई एक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, या एक समान का अभ्यास कर रहे हैं, केवल ये योग नहीं है। योग चलता फिरता योग, उसके ज्ञान के मनन में गहराई में चले जाना, ये भी योगी है एक प्रकार से। जो चाहिए वो जो है ना, आत्मा में जब अनंत शक्तियां हम कह रहे हैं, ये शक्तियां सब निष्क्रिय पड़ी हुई है, क्योंकि हम उसको एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट होगा सुझाव से, एक्टिवेट होगा समान से, एक्टिवेट होगा जागरण से, उसको जगाना है। ये सब अवचेतन मन में है, वो हिमखंड है, 90% नीचे है, निष्क्रिय है। उसको एक्टिवेट करने के लिए चेतन मन को निष्क्रिय करना पड़ेगा, इसको शांत करना पड़ेगा, तो वो एक्टिवेट सदा ही हो जाएगी। सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी, जन्म साथी, ट्विंस जो होते हो ना, साथ साथ जन्म लेते हैं ना ट्विंस, जन्म साथी, हम सफर, हम नवा, हम राही, हम दम, ये सब शब्द है। ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।